ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली है 13 अगस्त 2023। आज की मुरली का विषय है प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो, मतलब पवित्रता की रूहानी पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी जो आपकी बनती है वो याद रहे कि मैं पवित्र आत्मा हूं और उस स्वरूप द्वारा माया जीत बन पवित्रता को अपने जीवन में धारण करके माया जीत बनो। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 6 अप्रैल 1995। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे थे। हर एक स्नेही बच्चे की मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर वन है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी होती है, बहुत सुंदर है, बहुत पहलवान है, ये भी पर्सनैलिटी होती है। शरीर की भी कोई भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी, किसी में सहनशीलता ज्यादा है, किसी में धैर्यता, किसी में मधुरता, किसी में नम्रता, किसी में सरलता, है नहीं? कोई ना कोई गुण हर एक में, वो भी उसके पर्सनैलिटी। भाई ये चाहे शरीर उसका सुंदर हो या ना हो, शक्तिशाली हो या ना हो, परंतु उसके अंदर यदि कोई गुण है तो भी उसका गुण गाया जाता है, ये भी पर्सनैलिटी होती है। कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी होती है कि वो पद में ऊंचा है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, या किसी भी कप्तान है या मेजर है, मतलब ये भी पोजीशन होता है ना, ये भी पर्सनैलिटी होती है। उसको जहां भी जाते हैं, हाँ जी ये आया है, तो उसको भी पर्सनैलिटी हो जाती है। लेकिन आप सबके चेहरे पर कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी, ये आपके चेहरे से दिखाई दे पवित्रता का, कि ये पवित्र आत्मा है, ये अनुभव हो आपके चेहरे से, आपकी दृष्टि, आपकी वृत्ति, आपके बोल, आपके बोल, एकदम आपका एक एक कर्म हर एक को सुख देने वाला, पवित्र होगा तभी वो सबके साथ न्याय कर सकेगा, किसी का पक्षपात नहीं करेगा। प्योरिटी की पर्सनैलिटी मतलब व्यवहार में हर चीज में पवित्रता दिखाई दे, निष्पक्षता दिखाई दे, साक्षीपन दिखाई दे। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी ना सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो कि मेरे अंदर पवित्रता है, तो खुद अनुभव करो। जब हम अनुभव करेंगे तब हमारे संबंध संपर्क वाले भी अनुभव कर सकेंगे। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है? आप पवित्र हैं, आप ये अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा हूं, और फिर आप सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार करते हैं। सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार वही कर सकता है जो न्यारा और प्यारा हो। यदि वो किसी भी परिवार से, ग्रुप से, जाति से, बिरादरी से, देश से, मेरा देश, तो वो भी पक्षपात कर देगा क्योंकि ये दूसरे देश का, ये हमारे देश का है, इसके साथ तो हमने अच्छा व्यवहार करना है, ये हमारे देश का नहीं है। एकदम पक्षपात नहीं होगा, निष्पक्ष पवित्र माना एकदम निष्पक्ष होगा। बिरादरी का, परिवार का कोई सीमा नहीं, अपना और पराये का कोई अंतर नहीं, स्त्री और पुरुष का ये भी अंतर नहीं, पद और पोजीशन का भी अंतर नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, इसको ये देना इसको ये देना नहीं, मेरे लिए दोनों बराबर। मर्डर करने वाला और इसका मर्डर किया जा रहा है, दोनों में कोई अंतर, मेरे लिए दोनों क्या है बराबर। ये होना बुद्धि के अंदर, तब समझो कि मैं पवित्र आत्मा, ये अनुभव। ऐसा अब तक कोई है? सतयुग से लेकर अंत तक सारे कल्प में चक्कर लगाकर देखो, आप जैसी पर्सनैलिटी है, और आपकी पर्सनैलिटी में एक और भी जुड़ जाता है कि आप कौन हो, और कौन हो, और कौन हो, ईश्वर की संतान, यही पर्सनैलिटी है ना। इससे ऊंची पर्सनैलिटी किसी की हो सकती है? नहीं हो सकती। हमें भगवान ने अपना बच्चा बनाया है, ये नशा, ये पवित्रता की पर्सनैलिटी और किसी की हो सकती है? सतयुग में भी नहीं कह सकते कि हम भगवान के बच्चे हैं। तो आपको अपनी रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है अनादिकाल। अब सारे नशे दिखा रहे अनादिकाल। अनादिकाल कौन सा है? जब आप परम धाम में हो। अनादिकाल हमारा कहाँ है? परम धाम। क्या करें, अनादिकाल में आप परमात्मा के नजदीक, झाड़ दिखाई दे रहा है परम धाम वाला, परम धाम वाले झाड़ में जितनी पवित्र आत्मा वो उतना नजदीक
आगे
आगे आगे, है नहीं? वही सतयुग के आदि में आएंगे ना, जो पवित्र बनेंगे नहीं वो सतयुग के आदि में क्यों आएंगे? तो परम धाम में भी वो परमात्मा के नजदीक है। पर्सनैलिटी ऊंची हो गई ना, आज अनादि काल में भी आपकी पर्सनैलिटी ऊंची है, जो जितना कम पवित्र है वो उतना परमात्मा से दूर। आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है, चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य आत्माओं से ज्यादा है, क्योंकि आप पवित्र ज्यादा हैं, तो आपकी चमक भी क्या है, ज्यादा है। तो जितनी दूर होती जा रही हैं, उनकी उतनी चमक भी क्या होती जा रही है, कम होती जाएगी। अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है, न्यारी और प्यारी। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में, पूछ रहे हैं बाबा याद आया कि अभी नहीं आया? क्या परम धाम में कैसे हो? बाबा के नजदीक। चमक आपकी बाकी सबसे ज्यादा, जितना नजदीक उतनी चमक भी आपकी क्या है, बाकियों से ज्यादा। देख रहे हो अपने आप को परम धाम में, बाप दादा के साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को देख सकते हो। तो चले जाओ अनादि काल में, परम धाम में चले जाओ, देखो कि हम परम धाम में कैसे, कितने टाइम में जा सकते हो परम धाम, जाने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, नहीं, एक सेकंड बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल होता है जी, एक सेकंड से कम। आपने देखा होगा आपके टाइमर लगा हुआ है, एक सेकंड को भी 100 हिस्से में बांट देता है, और उसको भी 100 हिस्से में बांट देता है। हाँ, जब रेस करते हैं ना, उसमें सेकंड के भी 100 हिस्से नापे जाते हैं, पैर कब टिका उसको सेकंड के भी 100 हिस्सों में नापा जाता है। स्लो मोशन में दिखाते कि एक दिन एक घंटा चाहिए, एक सेकंड से भी कम, बाबा ने शब्द दिया है, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड से भी कम। एक ही सेकंड के अंदर आत्मा ने इधर शरीर छोड़ा भी और उधर गर्भ में प्रवेश किया भी, एक ही सेकंड में। दूसरा सेकंड नहीं लगता छोड़ने में भी और प्रवेश करने में, कितना तीखा रॉकेट है। हाँ ऐसा है कि उससे पहले ढूंढने की जरूरत नहीं, उससे पहले पता भी नहीं। हाँ भाई, जैसे आपने कभी गूगल में मैप देखा है, आप यहाँ से लिखो कि मैंने वहां जाना है, आप लिखते हो, बटन दबाते हो, वहीं दिखा देता है और उसके साथ ये भी बता देता है इतने घंटे इतने मिनट लगेंगे वहां पहुंचने में और इतने किलोमीटर है। मतलब एक सेकंड भी नहीं लगने देता, मतलब एक सेकंड से पहले ही वो आपको, मैं वही बता रहा हूं ना, और वो एक बटन दबाते ही आपको बता देता है इतने किलोमीटर दूर है और इतने रास्ते हैं। एक रास्ता नहीं, वो आपको चार पांच छह जितने भी रास्ते जाते हो बता देगा, इस रास्ते जाओगे टोल इतना लगेगा, इस रास्ते जाओगे इतना टाइम लगेगा, इस रास्ते जाओगे इतना टाइम, मतलब सारे नाप कर बता देगा। आपको देखने में टाइम लगेगा पर तो उसको बताने में टाइम नहीं लगता। आपने बटन दबाया और उसने सारी लाइनें निकाल के दिखा देगा कि ये रास्ते जाते हैं उस घर को, मान लो मैंने आपके घर आना है, वो यहाँ से सारे रास्ते दिखा देगा, इसमें रुकावटें हैं, इसमें रुकावटें नहीं है, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा पर तो टोल लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा, ये होगा, मतलब सारा कुछ बता देगा। आप एक एक रास्ते को देखने में टाइम लगाओगे पर तो उससे कोई टाइम नहीं लगा, उसने तुरंत सारे के सारे टोल भी देख लिए, रास्ते भी देख लिए, रास्ते में खराबियां भी देख ली, और नहीं कोई बिंदु नहीं घूमता, आपने नहीं देखा, मतलब जीपीएस इतना। तो हम आत्मा भी एक सेकंड में, पता नहीं था हमें कहां जाना है, तो उस सेकंड में हमने वहां जाना है जो हमारे पार्ट में हमने लिख रखा है, मतलब कुछ भी सोचने या पूछने की जरूरत नहीं रहती कि पहले देख के रखे वहां जाना है। हमें तो जाने के लिए रास्ता भी देखना पड़ेगा, उसे रास्ता देखने की भी जरूरत नहीं है, गूगल को रास्ता देखना नहीं पड़ता पहले से, उसके पास सारे रास्ते हैं। पर तो आपने वहां निशान लगाया और उसने वहां तक सारा कुछ देख लिया। एक दिन एक घंटा चाहिए, सेकंड से भी कम, जहां चाहो वहां पहुंच। आपकी स्पीड इतनी तेज है, एक सेकंड से भी कम टाइम में आप जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली, अब अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? आदि काल में पहुंच गए बाबा पूछ रहे हैं, या चल रहे हो? पहुंच गए तो अनादि काल से आदि काल में आपकी रूहानी पर्सनैलिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है, तन की भी तो मन की भी। सतयुग में तन भी कितना पवित्र है आपका और मन भी कितना पवित्र है, तो धन की भी और संबंध की भी, चारों ही आपके पवित्र। तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, धन भी पवित्र, संबंध भी पवित्र, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो, तो आदि काल में भी आपकी पर्सनैलिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वाह, 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी, तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में, तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही, आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन
आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं, उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है, होती है। कभी देखी है आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसी का होता है? जैसे आपके जड़ चित्र कितने सुंदर बनाए जाते हैं, ऐसे श्रृंगार क्या आपने अपना किया? कितना पैसा लगता है एक मूर्ति का श्रृंगार कराने के लिए, उनकी ड्रेस बनवाने के लिए? ऐसा श्रृंगार कोई मनुष्य अपना नहीं कर। तो मध्य काल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, समूर झाग से नहलाते थे मूर्तियों को, साबुन से नहीं नहलाएंगे, खराब हो जाएंगी। समुद्र झाग आता है उसके लिए, उससे उसको नहलाया जाता। आपकी पूजा होती है कि नहीं? आपकी मूर्तियां है ना, सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, आपको समझ में आ रहा है, या सुना है इसलिए समझ रहे हो हाँ हमारे होंगे। स्मृति में है तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ, अनादिकाल में भी टॉप, आदिकाल में भी टॉप, मध्य काल में भी टॉप, और लास्ट में आखिरी जन्म में जो मर जीवा ब्राह्मण जन्म मिला है आपको, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य करना हो तो आज तक आपके नामधारी ब्राह्मणों को बुलाकर करवाएंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण बने, आपका नाम ले रखा है उन्होंने, वो ब्राह्मण नहीं है, उनको बुलाया जाता है, नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं, चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं। अब वो दुनिया वाले जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण है नहीं, उनमें कोई गुण नहीं रहा ब्राह्मण वाला, परंतु हाँ जी, हाँ नामधारी ब्राह्मण है सिर्फ, अब तो जाति भी नहीं रही। कहां से किसी को पकड़ के ले आओ मंदिर में बिठा दो, वो पंडित बन गया, चाहे वहां वो ग्वाला हो, चाहे वो अनपढ़ हो, कुछ भी हो, मतलब उसका कोई जरूरी नहीं है किस जाति का है, किस बिरादरी का है, मंदिर में आके उसको बिठा दिया, वो ये पंडित पकड़ के ले आते हैं, चल भाई तू, चल तू मेरा दोस्त है, चल तेरा तेरे को एक मंदिर बना देते हैं, हाँ चुटिया अब गांठ लग जाएगी बस। अभी ब्राह्मण रहे नहीं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना, आपके नाम से आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों को अगर नाम भी आता है ना, तो कोई विशेष बुक में उनका नाम आता है, बुक ऑफ लिम्का है ना, ऐसे मतलब जो है ना बुक बनी हुई है, उनमें उनके नाम आते हैं, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? आपका नाम किसी किताब में आता है? साधारण बुक में नहीं आता। आपका गायन शास्त्रों में होता है, जिसको बड़े इज्जत से उठाते हैं, कपड़ों में लपेट कर रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी आरती करते हैं, वहां आपका नाम लिखा जाता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र है, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं, तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं, सिर पर उठा के चलेंगे। जो सच्चे भगत है वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते हैं, झूठा हाथ नहीं लगने देंगे, खाना खाते हुए उसको हाथ नहीं लगाएंगे, कितनी संभाल रखते हैं। और पढ़ते भी हैं ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं पढ़ते, कहीं भी बैठ के पढ़ लिया उसको बड़े सुंदर तरीके से चौकी पे रखेंगे और खुद भी अपने आसन पर बैठेंगे और बड़े तरीके से पढ़ेंगे। और यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ साहब को आपने देखा है, एक वो चावर लेके खड़ा होता है जो उसके ऊपर चावर झुलाता रहता है, सारा दिन उसकी ड्यूटी है चावर झुलाने की, ताकि कोई मक्खी वगैरह कोई भी उस किताब के ऊपर ना बैठे, रेत उसके ऊपर ना जमे। आम किताबों के मुताबिक उसको नहीं रखते, तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमज रूप में स्मृति में रखो। जानते हो, जानते हैं या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, दबा नहीं रहे, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थी का आधार है, फिर ताकत भी उसमें आ जाती है। और जहां समर्थी है वहां माया आ सकती है, पूछ रहे हैं बाबा, माया आ सकती है? आप किसी को पोजीशन मिल जाए, टीचर हो उसे प्रिंसिपल बना दिया जाए, उसे डिप्टी डायरेक्टर बना दिया जाए, उसे डायरेक्टर बना दिया जाए, तो जैसे उसकी पोजीशन चेंज होगी तो उसकी बोल चाल सब चेंज हो जाएगा ना, टीचर के बोलने हाँ उठना बैठना सारा चेंज हो जाएगा ना, टीचर का अलग, प्रिंसिपल का अलग, डायरेक्टर का अलग। और जहां समर्थ्य है फिर उसमें ताकत आ जाती है काम करने की, जहां समर्थ्य है वहां माया आ सकती है क्या? समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है, मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, माया का काम है आना, लेकिन आपका काम है अभी समय प्रमाण भगाना। समय प्रमाण भगाना नहीं, अभी आपका काम ये नहीं कि माया आए और आप उसको भगाओ, माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत। माया आई क्यों? तो माया जीतो, वह माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं, क्या हाल है? पूछ रहे हैं क्या हाल है, अभी भी भगाते रहते हो माया को? कि माया आई फिर आपने माया को भगाया, फिर माया आई फिर माया को भगाया, माया सदा के लिए काल के लिए भाग गई कि नहीं? अब सदा काल के लिए भाग गई, अब नहीं आएगी ना, फिर थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं, कभी कभी चाय पीने आ जाए। मेरी इतनी पुरानी दोस्ती है हमारी 2500 साल की, तो कभी कभी तो आना चाहिए ना मिलने के लिए, फिर भी आधा क्लब की दोस्ती है ना, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आए आवे ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का माया जीत बनने का अभ्यास चाहिए, अंत में नहीं हो सकेगा, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, अभी से अभ्यास चाहिए। अगर अंत में माया जीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? तो क्या हाल होगा? बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, रटवा दिया, तोता नलके पर बैठा था, और बोल रहा था तोताराम नलके पर नहीं बैठ, तोताराम नलके पर नहीं बैठ। उसे क्या पता नलका क्या और बैठना क्या, उसे तो लाइन रट ली है ना। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा समझा ही नहीं है, बोलने की जरूरत ही क्या है, मैं आत्मा हूं आत्मा हूं। हमें रटने से नहीं मिलना, मैं हूं ही आत्मा, इसको बोलना नहीं पड़े। लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा, आप बोलते भी रहेंगे मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, और माया अंदर अंदर अपना प्रभाव दिखाती रहेगी। तो बोलता रहे तो मैं आत्मा हूं, परंतु आत्मा समझेगा तो ये खा नहीं पाएगा, ये बोल नहीं पाएगा, ये कर नहीं पाएगा, मतलब वो आत्मा आत्मा करता रहेगा, परंतु माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, लेकिन होगा नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी भी अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो। उसका सहज साधन है, उसका सहज साधन क्या है, उसका सहज साधन अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो, याद रखो कि मैं हूं कौन। अभी कप्तान भूल जाए कि मैं कप्तान हूं तो कोई वैल्यू नहीं, मुझे याद है कि मैं कप्तान हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं डायरेक्टर हूं, तो उसके चलने में उसके बोलने में सब फर्क दिखाई देगा ना, नशा रहेगा। मैं ठेकेदार हूं, उसका नशा अलग होता है, मजदूर का और मिस्त्री का नशा अलग रहता है। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है, जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी, वो फिर छोटी बातें नहीं करेगा। जैसे कहते हैं कि बिरादरी से पता लग जाता है कि कौन सी बिरादरी का है, क्योंकि वो बातें वैसी करेगा, उसके काम वैसे होंगे, हर एक अपनी पोजीशन के हिसाब से बात करेगा। सिपाही की बात अलग है, थानेदार की बात अलग है, एएसपी की बात अलग है, टीएसपी की अलग है, हर एक की अपनी अलग अलग मिलेगी। हाँ, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूं, कर सकता हूं। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी, उसकी बुद्धि में सिर्फ एक रहेगी, मुझे ये करना है बस। क्यों, रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, उसको जो पाना था वो पा लिया, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न, संबंध और संपर्क में भी संपन्न भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों, रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या, गीत क्या गाते, गीत क्या गाते हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी वस्तु अप्राप्त। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना, जो गाते हो वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो, अच्छा बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे, प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह जानते हो? क्या है पवित्रता, किसे कहते हैं, किसको याद है पवित्रता, किसको कहते हैं प्योर शुद्ध? भाई भूला मत करो, नो मिक्सिंग, मिलावट नहीं, उसमें कुछ भी और जुड़ेगा नहीं। मैं आत्मा हूं तो आत्मा हूं, मेरा कहने के लिए कुछ नहीं। मेरा कह सकते हैं तो सिर्फ परमात्मा को कह सकते हैं, क्योंकि वो पवित्र है। आपने मैं आत्मा की जगह कुछ भी मेरा चिपकाया तो प्योरिटी नहीं। प्योरिटी की परिभाषा सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, दूसरी बात, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कोई अज्ञानी भी रहते हैं। राहुल गांधी भी ब्रह्मचारी रहता है भाई, शादी नहीं किए तो ब्रह्मचारी कहोगे उसको? वो कुआरे बाप अलग होते हैं, योगी है, मोदी है, शादी की है मोदी ने, अभी वाइफ जिंदा है उसकी, हाँ वाइफ को मानता नहीं, मेरी वाइफ है, उसने छोड़ दिया, पहले दिन ही मतलब शादी तो कर दी, पर तो उसके बाद छोड़ के चला गया, तो मैं नहीं रहूंगा, जब उसके साथ रहा ही नहीं। उसने अपना पति का नाम यही रखा हुआ है, मेरा पति वही है। पार्ट है हर एक का। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर, कई भगत भी रहते, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता, स्वच्छता और सत्य। स्वच्छता किसे कहते हैं? लो मिक्सिंग, अंदर बाहर साफ एकदम, जरा भी मिक्स हो गया उसे हम स्वच्छ नहीं कहेंगे। सत्यता पर केवल सच, झूठ तो जोड़ना ही नहीं, झूठ मिश्रित नहीं करना। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की वा सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि पूर्वक नहीं की, वा सूक्ष्म सेवा की लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने तो पाप किया ही नहीं, किसी को दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला गया समय गया, व्यर्थ समय चला गया या व्यर्थ कोई विचार चला या व्यर्थ समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ता है। 16 कला नहीं, थोड़ा सा भी फर्क आ गया, 16 कला तो नहीं कहेंगे ना, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला, 16.25 कला, कितना भी करो, कम तो कम ही है ना, नंबर वार हो जाएगा ना, तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप काम करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता पूर्वक विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, मैं बोलना नहीं चाहता था, मुंह से निकल गया, लेकिन बोल दिया ना, तो इसको क्या कहेंगे, मालिक है या दुश्मन है? इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प को, बोल को, कर्म को, सेवा को, सबको चेक करो। कोई मैंने बोल व्यर्थ बोल दिया हो, संकल्प व्यर्थ कर लिया हो, संकल्प गलत सुना रहा हूं, सेवा को सबको चेक करो, मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो चंद्रवंशी की मोटी निशानी तीर कमान दिया है, और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दी है, कृष्ण को मुरली दी है, और शिव बाबा को छोटा सा जो सूर्यवंशी हैं उनको छोटी सी मुरली दी, और राम को इतना बड़ा धनुष कमान और तीर दुनिया भर के जमेले पकड़ा दिए। वो जय मर तू अब सारा दिन लाद के खड़ा रहे। हाँ, मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशानी लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो। मुरली देखो क्या है, मुरली सुनिए क्या होता है। मुरली में बाबा नचाता है। आप मेरे सबसे टॉप बच्चे हो, कितना नचाए आज, उसको गाओ, तो गाओ, देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो, अभी महीन बुद्धि बने से महीन बुद्धि बनेंगे, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना, बताकर नहीं होना। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा कि इतने बजे इतने समय पर विनाश होगा, फिर तो आप टाइम कॉन्शियस हो जाएंगे। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना, डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है, क्या करना है? अच्छा, बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष चेक करेंगे। वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया, कह दिया हम करेंगे, किया नहीं, बाबा खुश हो गया, बाबा हम करके दिखाएंगे, और किया नहीं, ऐसे करने वाले नहीं बने। सिर्फ बोलने वाले नहीं, निभाने वाले हो, अच्छा देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था, बनना तो अच्छा है ना। तो जैसी तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी धारण करो, उसको जल्दी धारण करो। देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी करनी चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो, कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसे तो नहीं ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना, लगता है ना, अच्छा लगता है ना। तो सारे कल्प में, सारे कल्प में, दिन में, बीच बीच में ये अभ्यास करो। कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में एक सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास। इसके लिए कहते हैं कोई नहीं कह सकता, इसके लिए कोई नहीं कह सकता बच्चे के लिए। मैं बिजी हूं ऐसे कोई नहीं बोलेगा। एक सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य भी कर रहे हो, तो उनको भी एक सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज्यादा होगा वो नंबर नंबर आगे ले लेगा। नंबर ले लेगा। आगे ले लेंगे, ज्यादा नंबर ज्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा, क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अब इसे योग अवस्था में बैठ, योग की अवस्था में बैठ। ऐसे नहीं कि अगले साल डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच में ये अभ्यास करेंगे बीच बीच में, तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा अभी सब खुश राजी हो या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो, बहुत अच्छा। देखो कहां कहां से मेले में पहुंच गए हो, अच्छा चांस मिला है ना, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहते हैं। हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा? अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद का अनुभव कर रहे हो ना, कि थोड़ी 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 तकलीफ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है, लाइन में लगो तब ही खाना मिलेगा। लाइन में आन लगने में थकावट नहीं होती, लाइन में लगने में थकावट, मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा? 5000 साल के बाद मिलेगा। तो परिवार को देखकर खुश होते हो, खुश होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा निकलता, अच्छा तो भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना। और दो दिन बढ़ा देवे मेले को कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी, ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़ी ही होंगी, नई बात होगी ना। कोई बात पसंद आती है या पुरानी है, नई बात अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, अच्छी लगती है ना, नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनैलिटी की झलक दिखाने वाली शेष आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के स्वरूप, सत्यता से के शक्ति से स्व का रूप विश्व परिवर्तन के लिए करने वाले विश्व परिवर्तक आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। बच्चों को भी, बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, दादियों से अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही। ये संगठन का संकल्प ऐसा होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल भी नहीं सकता। विजय है तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संगठन। श्रेष्ठ संकल्प सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा, और समय प्रति समय अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था या होगा, लेकिन जो सोचा सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मुहूर्त का वरदान, संगठन की शक्ति, संगठन को शक्तिशाली देवता बनाते। पाप दादा सदा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेशी उड़ रहे हैं ना। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, स्वराज्य अधिकारी बन कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाने वाले तख्त अकाल तख्त नशे सो दिल तख्त निशीन। अकाल तख्त पर बैठेंगे पहले, फिर पवित्र बनकर देवताओं की सीट पर बैठेंगे। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, राजा हूं। जैसे राजा जब तक पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से सबका तीर्थ एक ही। सबका बैठे हैं, जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है, फिर ना दे या देदारी के कंपन। ना पदार्थ है ना एक बाप ही संसार है, इसलिए दे दे के सब संबंध पदार्थ सभी क्या कर दिए, एकदम बाबा के समान। इसलिए बाबा सारे यज्ञ को संभालते हैं, तस्त नशीन स्वयं। तो क्या करो, बाप के दिल तख्त नशीन बनते जाओ। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।